फिर साथ ही आगे कहते वह अहिद ना इला इब्राहिम, अब ये अहिद ना को इला के साथ जोड़कर देखें, ये तो एक नए ही रंग दे रहा है। ये नहीं कह दिया, कह दिया हमने इब्राहिम को, अहिद याहुदु अहद पुख्ता कमिटमेंट और इला टू वर्ड्स के मानों में, हमने इब्राहिम से ये पक्का अहद लिया, इब्राहिम के साथ इस्माइल से भी, अंतहिरा तुम दोनों, तहिरान था ये नून गिर गया, तुम दोनों उठाओ या पाक करो बेईत या मेरे घर को, किसके लिए ले तौईफी नवला के फी नवा रुक का इस सुजूद, तवाफ रुकू और सजदा करने वालों के लिए। तो हम कहते हैं लो जी इब्राहिम चुने गए थे, हम सोच रहे थे विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हो जाएंगे, ये तो सफाई का काम दे दिया इब्राहिम को, पहले मजदूर बना दिया, घर बनाओ, अब कह दिया सफाइयां भी तुम करो। आज लोगों को नजर नहीं आता कि जो दीन की जगहों की सफाई भी करते हैं वो कितना बड़ा काम करते हैं। लोग कहते चेंज ही नहीं आता, कुरान पढ़ के भी लोग नहीं बदलते, भाई कैसे चेंज नहीं आता, कौन जाके अल्लाह के घरों को साफ करता है, ये कुरान करवाता है आपसे ये घर साफ, मस्जिदें कोई ऐसे साफ थोड़ी करते हैं जैसे आप ये घर साफ करते हैं, ये आपकी तारीफें हो रही हैं अगर आप अल्लाह के रास्ते में सफाइयाँ करते हैं, और ये इब्राहिम की सुन्नत है। और आप देखिए कि बैत या अल्लाह ने अपना घर का तौईफीन, ताइफ की जमा तौईफीन, तवाफ करने वाला मुराद है, ताइफीन ताइफ से, ताइफ कहते घूमने वाले को, लेकिन मुराद जहां क्या तवाफीन तवाफ करने वालों से, आकिफीन आकिफ की जमा, जम के इबादत के लिए बैठना, मतलब आप थोड़ी देर कहीं बैठे उठ के चले गए वो जमना नहीं, कई लोग क्लास में भी ऐसे ही बैठते हैं, यहाँ तो आप मुझे पता नहीं बैठते ऐसे, उठ ही नहीं सकते, उठेंगे तो फौरन दे, कई वो आखिरी लाइन में बैठते हैं ताकि थोड़ी देर बाद एक चक्कर लगाएं बाहर, थोड़ी देर बाद बाहर तो देख लें, आकिफीन के जम जाए, एतकाफ बीसी से तो अकफ याकिफू से एतकाफ, फिर रुक्का रुक्का रा के उनकी जमा है, रुकू करने वाले, और सुजूद साजिद की जमा, ये सारे इसम है इसलिए इसके अगर आप वाहे जमा देखें तो आपको बड़े डिफरेंट लगेंगे, मुराद चाहे कि वहां इबादत के लिए आने वालों के लिए इस घर को साफ करो। सवाल पैदा होता है किस किस्म की पाकिजगी, किस चीज की सफाई यहाँ मुराद है, नंबर एक जाहरी सफाई, गंदगी ना हो, जो लोग आए तो उनके दिलों में कोफ्त ना हो, कदूरत ना हो कि इतना गंदा घर है, और आज भी देखिए खाना कहवा कितना साफ है, और दूसरी बात बातनी तहारत, तौहीद का प्रचार हो, शिर्क से पाक करो, कुफर ना हो, शिर्क ना हो, कोई बुत ना हो, कुछ ना हो। अब अगर आप देखें तो इस एक आयत के अंदर हमें खाना काबा से मुतल्लिक जो चीज़ें, एक तो मसाबा हमने देख ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब एक टीले पर खड़े होकर अल्लाह ताला की तरफ लोगों को पुकारा, अल्लाह ने कहा कि अब आप कह दें, आगे आ रही है बात कि इब्राहिम ने तरीका पूछा था, कहते हैं कि इब्राहिम ने कहा अल्लाह ताला मेरी आवाज़ इन पहाड़ों में गुम हो जाएगी, कौन सुनेगा मेरी आवाज़, तो क्या कहा, आप बात तो करें, सूरह हज में असल में इसकी डिटेल आएंगी, अज़िन फिन्नास या तू करे जालन, इब्राहिम आप पुकार तो लगाइए, और रिवायात में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस टीले पे खड़े होकर पुकारा, हर रूह ने जिसमें आपकी मेरी भी रूहें होंगी उन्होंने उस पुकार पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह दिया, वो मरने से पहले इंशाल्लाह हज जरूर करेंगे, जिनके नसीब में था अल्लाह ताला ने करा दिया, और आज भी देख लीजिए क्या सीधा सा घर है काले रंग का, लेकिन कोई तो बात है कि लोगों का दिल वहां जाता है। एक तो स्लाइड आपको भी आई होगी चंद दिन पहले, एक तरफ बड़े फूल बूटे बने थे स्विट्जरलैंड लिखा था नीचे, दूसरी तरफ काबा लिखा था, और पूछा था आप किधर जाना चाहेंगे, तो आप तो जाएंगे काबा, बच्चे हो सकता है स्विट्जरलैंड चले जाए, लेकिन उस घर में है क्या, दिल चाहता फिर जाने को, हमेशा दिल करता, ये मसाबा है। और अमना की बात यहाँ थोड़ी है, आगे आप इंशाल्लाह सूरह हज में इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, अल अमिन का लफ्ज़ है ईमान, यानी वहाँ अमन बहुत है, टेंशन फ्री, मामन के मानों में अमन की जगह, आप देखें नबी सल्लम की बेसर से पहले वहाँ जो बदमनी सफाकी जुल्म सब कुछ था, इस्लाम के आने के बाद मोहब्बत हो गई, तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएँ हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है मस्जिदों की सफाई में, नबी सल्लम ने फरमाया कि जो लहसुन खाए कच्चा वो मस्जिद में ना आए, कच्चा प्याज खाने वाला मस्जिद में ना आए, मिसवाक को नबी सल्लम कितना चुनते थे, तो सफाई की तरफ इशारा है कि आप और मैं इवन यहाँ आते हैं ना तो हमारे पास से स्मेल नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे तबीयत में बोझ पैदा होता है, और वहाँ तो वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो हुक्का पीना सिगरेट पीना और ऐसी चीज़ें ये वहाँ की हिकमतों के खिलाफ है। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा, किसी ने थूक दिया तो आपने खुद उसको खुरचा और अपने घर से खुशबू मंगवा कर वहां लगा दी, तो बिला वजह ऐसी जगहों को गंदा नहीं करना चाहिए, घर गंदा रख लें लेकिन इस जगह को गंदा नहीं करना, जहां गंदगी पड़ी उसको उठा दें। फिर इसी तरह तथहीर, कह के लहवो लाइब ना हो, बेकार बातें ना हो, हंगामे ना हो, दुनिया की बातें ना अंदर जाके की जाए, फोकस्ड हो, अच्छे तरीके से उसको रखा जाए। और ये तवाफ भी एक अजीब ही बात है। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी का किबला काबा तेरी तरफ है, और मैं हर चक्कर में यही कहती हूँ कि मैं तेरे ही तरफ झुकूंगी और तेरे ही सामने ये सारी बातें करूंगी। तो असल में ये प्रोटोकॉल था इस बात का। एक छोटी सी चीज बीच में राह में आ गई है, वो क्या है? इस्माइल। इस्माइल कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे, आपकी बीवी हाजरा के बतन से पैदा हुए, सने विलादत गालिबन यकीनी तो नहीं हो सकता, लेकिन 2074 कबल मसीह, यानी हजरत ईसा से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा हुए थे, और वफात 1937। अब ये 1937 नहीं है, ये कबल मसीह, ईसा के भी आने से पहले की बात है। तौरात के मुताबिक इनकी उम्र 137 ईयर्स की हुई। इनके भी 12 बेटे हुए, 12 इनकी नस्लें चली, और इनके अलावा इससे होते होते आपको पता है कि नबी सल्लम आपकी नस्ल से पैदा हुए थे, और बचपन में ही इनको अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहिम ने खाना काबा के पास छोड़ दिया था। डिटेल्स इनके आगे भी आती रहेंगी जहाँ बताऊँगी, लेकिन अल्लाह जिसको चुन ले। अब देखिए, बाप बेटे को चुना। वह इस काला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम, बोले नेके को, पढ़िए, वाइस काल इब्राहिम, कुछ ने कह रहे हैं कुछ को कह रहे हैं, जब कहा इब्राहिम ने, पेश कह रही है कि इब्राहिम कहने वाले हैं, फाइल है, ठीक है। रब्बी जल हासब लदना अमीनन, अब दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। ऐ मेरे रब, कर दे इस घर को अमन वाला, वर्जुक अहलहु मिनस समरात, दूसरी चीज इसके रहने वालों को फलों से रिस्क दे, पर सबको नहीं देना, किसको देना? मना मना मिनहुम बिल्लाही, जो ईमान लाए उनमें से तुम पर। यहां से इब्राहिम की अल्लाह से मोहब्बत दिख रही है। अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को रिस्क देना, वल यौमिल आखिर, और आखिरत को मानने वालों को। यानी इब्राहिम ने किसकी बात की? मोहब्बत की। जवाब देखिए, काला, फरमाया किसने? अल्लाह ने। वमन कफरा, और जो कोई कुफर भी करे, फउमत्तिहु कलीलन, मैं उसको भी फायदा दूंगा मगर थोड़ा सा। अल्लाह किसकी बात कर रहे हैं? इंसाफ की। लिखिए ये जुमला, बड़ा अहम है। इब्राहिम ने मोहब्बत की बात की कि सिर्फ नेकों को रिस्क देना, और जो गुनाहगार है ना वो भूख से मर जाए, इनको ना कुछ देना, इनको पानी भी ना देना। पर अल्लाह ने अपनी रबूबियत की बात की कि इब्राहिम इतनी सख्ती ना करें, आप ये कह सकते हैं कि गुनाहगारों को ना देना, नेकों को देना, मैं तो गुनाहगारों को भी दूंगा, हाँ मगर थोड़ा वक्त दूंगा, सुम्मत तर रूहिला अजाबिन नार, फिर मैं उनको मुस्तर कर दूंगा, बेबस कर दूंगा। ये जो मुस्तर है ना, इसमें तोए रूट की नहीं है, द्वाद रहा है, ये तोए भी इसके अंदर एक क्यामत की है, क्यामत थर्मोराजे की, इसकी पीछे बड़ी बड़ी हिकमतें हैं, शिद्दत है इसके अंदर, इस तराब में बदल जाता है जरर, जब बहुत शिद्दत को इख्तियार करता है, मतलब यह कि इसको बेबस कर दूंगा इलाजा बिन नार, आग के जाब की तरफ, वबी सल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अमूमन मिस्त्री मजदूर घर बनाते हुए क्या कर रहे होते हैं? गाने सुन रहे होते हैं, या गाने गा रहे होते हैं, या गालियां दे रहे होते हैं, या कुछ भी कर रहे होंगे। बाप बेटा अल्लाह का घर बना रहे हैं और साथ दुआएं मांग रहे हैं। इब्राहिम ने मोमिनों के लिए यहाँ क्या क्या मांगा है? नंबर एक, आमीनन, अमन, नोट कीजिएगा, बड़ी अहम बात है। सिर्फ अपने नहीं, अपनी औलाद को भी साथ शामिल किया, और दुआ की अमन की। दूसरी दुआ किसकी की? रिस्क की, ठीक है, फलों के, और उसके बाद आगे भी आएगी बात। लेकिन आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ किस किस रंग में कबूल हुई। अगर आप देखें तो अल्लाह सुबहान ताला ने, वो एक बंजर सा शहर था जहाँ कुछ भी नहीं उगता था, और चारों तरफ से काफले आते और जाते थे, लेकिन इसको अमन की जगह बना दिया, बैरूनी दुश्मनों से महफूज किया, मक्का पे आज तक कोई हमला करने की जरूरत नहीं कर सका। फिर इसी तरह आप देखें कि वहाँ कुछ नहीं उगता, लेकिन रिस्क कितना होता है, आप जाके देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि इतना खाना है। फिर अमन इतना है कि वहाँ कीड़े को, जानवर को कोई मार नहीं सकता, अमान में आ जाता है। फिर हुरमत के महीनों को साथ रख लें तो पूरी दुनिया से लोग अगर उधर आए तो किसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यानी आप ये कह लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआएं कबूल हुई, और इन्हीं की दुआओं का जिक्र सूरह कुरैश में क्या कहते हैं? फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू वआमनहुम मिन खौफ। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआएं कबूल हुई। सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम ने दुनिया क्यों मांगी? दुनिया के फल क्यों मांगे, ये क्यों नहीं कह दी इनको अल्लाह जन्नत में ही देना खजूरें और जन्नत में अंगूर खिलाना। तो पता चला कि आप अपनी औलाद के लिए दुनिया मांग सकते हैं। ये नहीं कहा अल्लाह मेरी औलाद को दुनिया में रूखी सूखी खिलाना, मरे एड़ियां रगड़े जन्नत के फल देना, नहीं दुनिया मांगे, लेकिन सिर्फ दुनिया ना मांगे और गालिब दुनिया ना मांगे, दुनिया भी मांगे दुनिया ही ना मांगे। अब इसमें जो जुमला याद रहता है उसको लिख लें, तो क्या पता चला कि दीन दुनिया दोनों मांगी। और समर की बात है जो हर तरह की पैदावार है, जमीन से भी उगती है और मेहनत का समर भी होता है, यानी फ्रूट्स के मानों में भी और मेहनत में भी। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ एक छोटी सी बात को, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा था उनके बारे में, इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा। इब्राहिम को क्या कहा, इमाम। फर्क क्या है, आदम को कहा खिलाफत दूंगा, इब्राहिम को कहा इमाम बनाऊंगा। कोई बताना चाहता है आप में से? और आदम को कौन सा इल्म दिया, अल्लाह आदम अल अस्मा कुल्ला दुनिया का। इब्राहिम को क्या दिया, दीन का। लिखिए जुमला, दुनिया की खिलाफत यानी बड़ा बनना और इंडस्ट्री का कब्जे में होना और मीडिया का और लोगों के जहनों पे मुसल्लत होना, किन के लिए, जो कौमें दुनियावी तरक्की करेंगी। आज नॉन मुस्लिम अगर दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज हैं तो वजह ये कि वो दुनिया में मेहनत कर रहे हैं। इमामत के लिए इल्मुल वही लाजिम है, ये मुराद है। मुसलमान इस दुनिया के कामों में आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह खिलाफत उनको भी देगा, बट इमामत का मनसब तब मिलता है जब अल्लाह से गाइडलाइन भी ली जाती है। बड़ा ज़रूरी है इस पर गौर करना कि किस तरह अल्लाह ताला कबूल करते हैं। और अब वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार था, वह यरफ़ इब्राहीम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माइल। और वो याद करो जब उठा रहे थे, आज आपको वो बात समझ आएगी जो मैंने अभी शुरू में बताई थी। यरफ़ इब्राहीम, उठा रहे थे, बना नहीं रहे थे। देखिए बंदा उठाता क्या है, बुनियादों के ऊपर क्या उठती हैं, दीवारें। यहाँ यरफ़ का लफ्ज़ बता रहा है कि बुनियादें पहले से मौजूद थी। क्या उठा रहे थे इब्राहिम, अल कवायद, कायदा तुन की जमा, बुनियाद को कहते हैं। ये जो बच्चे को कायदा पढ़ाते हैं ना, वो भी यही कायदे ही की जमा है, बच्चे की बुनियाद बन रही होती है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि इब्राहिम खाना काबा के पहले मेमार नहीं है, बानी भी नहीं है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। सूरत आल इमरान आयत 96 में हम बात करेंगे इस पर, इन नवला बैतिन वुदिया लिन्नास इल्लज़ी बिबक्का, वहाँ ये चीज़ आ जाएगी। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम से इब्राहिम तक तकरीबन 4000 बरस थे और उस दौरान दूसरी चीज़ें नहीं थी, ये इसकी बुनियादें बाकी रह चुकी थी। इसी पर फिर अल्लाह ताला ने दोबारा बनाया और साथ बेटे को शामिल कर लिया और कह क्या रहे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ मेरे रब या हमारे रब कबूल कर। ज़रा सा गौर कीजिएगा, नेकी का काम कर रहे थे ना आप, आयत पे नज़र डालेंगे फिर समझ आएगी बात। इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा बनाया ना, तो क्या कहना चाहिए था, कह रब हमने तेरा घर बनाया तो सवाब दे हमें इसका। यहाँ क्या जुमला आना चाहिए था, और याद करो जब कि इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्ला की बुनियादें उठा रहे थे और वो दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह अब तू हमें इसका सवाब दे, सवाब नहीं मांगा, तकब्बल मिन्ना मांगा। क्यों, कबूलियत कहते हैं उस काम को जिसमें आप कुछ करें और उसके बदले में फिर उससे कुछ चाहें भी। कबूलियत का लफ्ज़ यहाँ बताता है कि ईमान वाले को दीन का काम सवाब से ज़्यादा कबूलियत के जज्बों के साथ करना चाहिए। समझ आया जुमला, आप बड़े बड़े सवाब के पैमाने बनाकर भी 1,25,000 दफ़ा आयत करीमा पढ़ लेना, लेकिन अगर अल्लाह ने आपका एक बार भी नहीं कबूल किया क्योंकि आपके दिल में नदामत ही नहीं थी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ना अल्लाह की बड़ाई का एहसास हुआ एक बार भी और ना अपने गुनाहगार होने का हुआ, तो वो 1,25,000 बड़ा ज़ाया। कबूल कब होगा, जब आपका दिल रोया के ए अल्लाह मैं गुनाहगार और तू बड़ा। तो असल चीज़ कबूलियत है, काबिलियत नहीं है। ये जुमला मैं हर साल तफसीर में लिखाती हूँ, असल चीज़ कबूलियत है, काबिलियत नहीं। आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, अगला ही नहीं आपको कबूल कर रहा तो किस लेखे, क्या फ़ायदा उसका। फ़ायदा कब होगा, जब कबूल कर। आम वाजबी शक्ल की लड़कियाँ होती हैं शोहरों के दिल पर राज करती हैं, कबूल कर लिया ना उसके दिल ने कि यू आर माई वाइफ, आई लव यू। और जो चांद के टुकड़े या हीरे की कनियाँ होती हैं, मर्द कहते हैं हमें इसमें कोई कशिश ही नहीं दिखती, हम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो कबूल नहीं किया ना, तो दुआ करें कि ये मेरी आपकी छोटी छोटी कोशिशें कबूल हो जाएं। और लिखिए, जब कोई चीज कबूल हो जाती है ना तो और मौका मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर और बड़ी नेकियों का भी मौका क्यों दिया, क्योंकि पहला कबूल हो गया। ये ऐसे ही ना, जैसे एक फर्म है तो वो कोई ऑर्डर भेजती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान से सैंपल भेजती है, अमेरिका में दिखाता है कोई कि ये जैकेट अच्छी है, बना लो, ठीक है, पसंद आ गई, तो रोज फैक्ट्री से फिर नया ऑर्डर आएगा ना, फिर वो सियालकोट से जैकेटें बनेंगी, ग्लव्स बनेंगे, तो जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतने ज्यादा कबूल होते गए। मैं और आप नेकी करें और दिन ब दिन हमसे नेकियां और ली जाएं। कोई कहता है आप एक दिन आती हैं, दो दिन नहीं आ सकती, आप एक घंटा आती थी, डेढ़ घंटा कर लें तो क्या ख्याल है, तो ये है कबूलियत। और अगला कहता है कि ये कुर्सी खाली हो, ये उठें बेकार बैठी रहती हैं, कोई अगला आना है, तो आप कहते हैं नहीं आप आधे घंटे पर जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम, दिन भी तो छोटे हो गए ना, आप चली जाएं, तो ये है आपकी ना कबूलियत। दुआ करें कि अल्लाह कबूल कर ले हमारी कोशिशों को। और इन नकंत समीउल अलीम, बेशक तू ही है खूब सुनने और जानने वाला, तू सबको सुनता है, तू सभी बातों को जानता है। और आप देखिए कि इस वक्त अल्लाह सुबहाना ताला ने इन बातों को सामने रखा है कि किस तरह से ये सारी बातें करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन बातों को करें, और साथ ही फिर देखें कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ये है असल बात। मस्जिदें बनानी क्या बड़ी बात है, सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं दुनिया की, और कह रहे हैं अल्लाह अब मुझे और मेरे इस बेटे को नमाजी भी रखना, हम खुद भी नमाज पढ़ें, हम तेरे मुस्लिम बने रहे, यानी कि हम दूसरों को जलाते रहें और खुद हम नेकी का काम ना करें। इससे क्या पता चलता है कि दीन के कामों का जरिया बनना भी अच्छी बात है, बट खुद भी उस पर अमल करना जरूरी है। वमिन ज़ुर्रियती ना, और हमारी औलाद में से भी उम्मतम मुस्लिमत अलग, एक मुसलमान उम्मत उठा, ये हैं वो दुआएं जो लग गई मुझे और आपको, और नबी भी उठ गया और हम भी उठ गए। वारी ना मना सिका ना, और सिखा हमको, अरी ना दिखा, रोयत से अलिफ जो है ना इसमें अरा के साथ है, रा असल में लफ्ज था, जैसे रोयत कहते हैं ख्वाब को, यानी सिखा, विजुअल इशारा, इधर आज कहते हैं विजुअल लर्निंग, करके दिखा, जैसे आप नमाज का तरीका बच्चों को वीडियो पे दिखा दें तो उनको ज्यादा याद रहेगा बजाय इसके कि जुबानी बताएं। तो अरी ना में क्या कहला, दिखा अब हज कैसे करें, मनासिका ना, मनासिक मनसक की जमा, नुसुक कहते हैं बहाने को, टू पोर, गुना धुल जाते हैं जब बंदा तरीका इबादत को इख्तियार करता है, कुर्बानी को भी नसीका कहते हैं, मतलब यह है कि हमने घर भी बना लिया, दुआ भी कर ली, क्या बेक यहां रसूल भेज, नबी की दुआएं मांगी, और तरीका आप क्यूरिकुलम दे, आप बता करना क्या है भाई, वजह क्या, इब्राहिम पढ़े लिखे नहीं थे, पहुंचे हुए थे ना अल्लाह के करीब थे, खुद ही तरीका ईजाद कर लेते। ये आयत बता रही है कि दीन के तरीके ईजाद नहीं किए जाते बल्कि माने जाते हैं। और फिर साथ ही आगे यानी इतनी बात करके तवाब रहीम, तू तौबा कबूल करता रहम करता है, साथ ही फरमा दिया कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ए रब भेज इनमें रसूल, इन्हीं में से, इन्हीं में से क्यों होगा, तभी तो इनकी जुबान समझेगा, इनके मसाइल समझेगा, इनकी प्रॉब्लम समझेगा। और दूसरा काम, मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक, वो इन पर तेरी आयतें पढ़ेगा, तिलावत, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और एक किताब भी इनको सिखाएगा, वल हिकम और हिकमत भी, वयुज़क्कीहिम और तज़किया करेगा इनका, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू ही ग़ालिब और हिकमत वाला है। थोड़ा सा इन सारी आयात के अंदर से कुछ चीज़ें हमारे अमल की, पहली बात देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ मिलकर घर बना रहे हैं, तो इसमें आपके और मेरे अमल की बात है कि नेकी के कामों में हमें अपने घर वालों को साथ रखना चाहिए, ख़ास तौर पे अपनी औलादों को, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मुतासिर होते हैं, और जो काम माँ बाप करते हैं फिर बच्चों के लिए भी करना आसान हो जाता है। दूसरी बात देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले खुद नेकी का काम किया, यानी अल्लाह का घर कायम किया, फिर दुआएं मांगी, तो फिर वो दुआएं तो कबूल होंगी। इससे क्या पता चलता है कि आप चाहते हैं अगर कि आपकी दुआएं कबूल हों, तो ना सिर्फ ये कि फराइज को पूरा करें बल्कि खुद से अल्लाह के रास्ते के काम करें। मसलन आप देखिए कि वॉलंटियर करते हैं, आप अपने दिल की खुशी से अल्लाह के रास्ते में कोई काम करते हैं, इस दुआ और इस नीयत के साथ किया करें कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, एक बात। दूसरा, उस वक्त ये दुआ किया करें कि अल्लाह हम तेरे काम करें, तू हमारे काम कर। और तीसरी बात ये कहा करें कि अल्लाह मैं जो काम कर रही हूं ना, इससे मजीद काम करने की तौफीक दे। आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा आपकी दिल में शिद्दत और चाहत होगी ना, उतना अल्लाह ताला आपसे ये काम लेगा। फिर इधर आपने इन दुआओं में एक चीज देखी होगी कि रब्बना की बात बहुत आई है, अल्लाह ताला की सिफत रबूबियत को सामने रखते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी हैं। फिर अगली चीज आप देखिए कि इसमें ये मिलता है कि किसी तीसरे को बीच में नहीं डाला। आज हम कहते हैं कि खुद तो दुआ मांग ही नहीं सकते, बुजुर्ग ही कोई बीच में आएगा, किसी का वसीला, कोई वास्ता। आप कुरान में आप नबियों की दुआएं पढ़नी शुरू हो गए हैं, आज पहली दफा आपके सामने यहाँ हजरत इब्राहिम की दुआ है, पीछे हजरत आदम की दुआ का तस्करा तो था, लेकिन दुआ सूरत अल अराफ में आएगी, और फिर पीछे हम हजरत मूसा की दुआ भी पढ़ चुके। अभी से ही नोट करते जाएं, पूरे कुरान के सफर में कुरानी दुआएं, हर नबी की दुआ पढ़ेंगे, रब्बी, रब्बाना, अल्लाहुमा, बस। किसी जगह ये तक नहीं कहा रब्बे मोहम्मद, या रब्बी आदम, या रब्बी इब्राहिम। तो इससे क्या पता चलता है कि एक इंसान को दुआ मांगने में बहुत क्लियर होना चाहिए, और अल्लाह के साथ आपका अपना ताल्लुक इतना खूबसूरत हो कि आप उसको बुनियाद बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी अकल ना भी इस्तेमाल करें तो बाकी बातें जो हैं वही हमारे लिए बहुत सारी हैं। फिर इसी तरह से एक रिवायत के मुताबिक ये तक आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था और जिन चीज़ों को पूरा किया था, उनमें 10 बातें हैं हदीस के मुताबिक ये चीज़ हमें मिलती है, मसलन कुल्ली करना, यह हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, नाक में पानी डालना, कंघी करना, मूछें तरछवाना, मिसवाक का इस्तेमाल, खतना पहली दफा हजरत इब्राहिम ने अपना किया था, अंडर आर्म्स यानी बगल के बालों को साफ करना, जेरे नाफ यानी अंडर आर्म्स के बालों को साफ करना, नाखून कटवाना, पानी से तहारत हासिल करना, ये सब भी कहते हैं कि 10 खसाइस हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने रखे हैं। फिर अगली चीज़ आप देखिए कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का जो किरदार हमें खाना कबा की तामीर पे, किसी और को हायर क्यों नहीं कर लिया, पैसे दे देते। यहाँ से जिस्मानी कुर्बानियों की तरफ भी इशारा है, बहुत सारे काम हम पैसे दे के करा सकते हैं, पैसे देते हुए वो तकलीफ नहीं होती जो जान लगाते हुए होती है। आज भी दीन के नाम पर दो तरह के खिदमतकार होते हैं, एक माल देते हैं, एक जान देते हैं। डिपेंड करता है कि आपको प्यार किस चीज़ से ज़्यादा है। अगर नरम तबा है ना, काम घर में नहीं कभी किया, तो फिर दीन का काम करने का ज़्यादा अजर होगा। और अगर माल से बड़ी मोहब्बत है, जान निकल जाती है नोट निकालते हुए, तो फिर माल देने का अजर ज़्यादा होगा। अल्लाह के रास्ते में उस काम का ज्यादा अजर मिलता है बंदे को, नंबर एक जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो, और दूसरी बात जरूरत, ये बड़ी अहम है। व्हाट इज द नीड ऑफ आवर, उस वक्त किस काम की जरूरत है। माल की जरूरत है तो माल बड़ी नेकी हो जाएगी, और अगर जान लगाने की जरूरत है, वक्त लगाने की, तो जान और वक्त होगा। तीसरी एक चीज होती है, आपका कोई ऑल्टरनेट है, दो में से एक काम आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा बंदा सिर्फ एक ही काम कर सकता है। माल आप भी लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकता है, लेकिन आप जान भी लगा सकते हैं या वक्त दे सकते हैं, अगला वक्त नहीं दे सकता, तो फिर आप वक्त देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे इंसान अपने कामों में खुद अकल इस्तेमाल करता है, कहाँ क्या कुछ होगा, इसी तरह से दूसरी चीज समझ आएगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4000 साल पहले ये दुआ मांगी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ये पूरी हुई। आपने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, अपनी माँ का ख्वाब हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, क्योंकि हजरत ईसा की भी खुशखबरी इस कुरान में ही आएगी कि उन्होंने कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा, सूरह सफ़ में हम पढ़ेंगे बहुत आखिर में जाके। लेकिन कहने का इस वक्त मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का ये नतीजा है। किसी ने बड़ा खूबसूरत कमेंट दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लम को मांगा, 4000 साल बाद ये दुआ कबूल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को मांगा और उसी दिन कबूल हो गई, क्योंकि सहाबी ने कहा मैंने सुबह ही सुना है कि नबी सल्लम कह रहे थे कि या उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हश्याम से इस्लाम को इज्जत दे दें। हम दुआ करके कितनी जल्दी थक जाते हैं, कहते सुनी नहीं अल्लाह ने, 3 दफा मांगी थी, 3 महीने से मांग रही हूं। नहीं, दुआ मांगने के बाद भूल जाए। फिर आप देखिए कि इधर जो अल्लाह साहब सुभान तआला ने इस सबक में ला यनालु अहदे ज़ालिमीन की बात आई थी, तो जालिम से क्या मुराद है, शिर्क करने वाले, अल्लाह की हदों से निकलने वाले, अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात या कवानीन पे अमल ना करने वाले। پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ کے گھروں میں اس کے نام کے ذکر سے روکنے والے، اس کو ویران اور خراب کرنے والے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی کو چھپانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت سے منہ پھیرنے والے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی اگر آپ ذرا سا اس سناریو کو دیکھیں، اسباب نہیں تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری دعائیں مانگی، لیکن اللہ نے بنا دیے۔ آج آپ کے میرے لیے بھی یہی عمل ہے، جب آپ کو مجھے کوئی دعا مانگنے کا یا نیکی کا پلان بنانے کا، کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کا موقع ملے نا، یہ سوچ کے کر دیں کہ اللہ اسباب بنا دے گا۔ بعض وقت ہماری دعاؤں سے اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ارادہ شروع کریں اللہ آپ کے لیے مدد کریں گے، ورنہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں ابھی تو کر ہی نہیں سکتی، ابھی تو میرے سرکمسٹانسز ہی سوٹیبل نہیں ہے، ابھی تو دے یہ وہ، تو پھر 10 سال بعد بھی آپ یہی کہتے ہوئے سنائی دیے جائیں گے۔ آپ کا میرا کام پہلا قدم اٹھانا ہے، اگلا قدم اللہ تعالیٰ خود اٹھوا لے گا۔ دوسری چیز دیکھیے کہ یہ کعبہ کے ذریعے اصل میں اسلام کا ایک ریچول حج مکمل کرایا جا رہا ہے، یہ بھی قابل غور نقطہ ہے، اور اسلام میں حج کو بنیادی پلر کی اہمیت حاصل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پہ پٹخ دے گا۔ ابن کثیر میں آپ یہ روایت دیکھ سکتی ہیں۔ تو جس نے ابھی تک حج نہیں کیا اس کو حج بھی کرنا ہے۔ یہ سوچیں کہ مجھے گھر بنانا تو نہیں پڑ رہا، حج ہی کرنا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کا گھر بنا دیا تھا، اور مکہ کی غربت اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم بہت کچھ پڑھتے جائیں گے۔